और धरती यूं बनी। रूपांतर संध्या राव। कला उमा कृष्ण स्वामी। अनुवाद सुषमा।
ये एक शब्द पंछी पुस्तक है। जब आपको शब्द पंछी की ऐसी आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब है शब्द पंछी आपको दूसरी किसी भाषा के शब्द का अर्थ समझाना चाहता है, या फिर ऐसे किसी शब्द का अर्थ जो आप एकदम से ना समझ पाए। याद रखिए, ये आवाज शब्द पंछी की है। कहानी के दौरान जब आप ये आवाज सुने तो इसका मतलब है पन्ना पलटिए। और अंत में जब आप ये आवाज तीन बार सुने तो इसका मतलब है कहानी समाप्त हो गई।
गुना बाबा भिलाला कबीले के बहुत ही माने हुए बुजुर्ग हैं। सृष्टि की रचना की ये कहानी उनकी सुनाई हुई है। भिलाला के लोग मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रहते हैं। गुना बाबा बैठते हैं एक मिट्टी से बनी कुटिया में, जो झाबुआ जिले के झिंझिनी गांव में है। कुटिया की दीवारों पर बने चित्र तेज और भड़कीले लाल, नीले, पीले और सफेद रंगों में चमकते हुए बताते हैं धरती कैसे बनी। भारत में धरती की रचना के बारे में सैकड़ों कहानियां हैं। ये कहानी गुना बाबा के लोगों की है।
शुरू शुरू में गुना बाबा कहते हैं कहीं कोई धरती नहीं थी, सिर्फ पानी था। हर तरफ चमकता दमकता पानी ही पानी। न केवल सभी जानवर और इंसान बल्कि बहुत सारे पक्षी भी पानी पर मुश्किल से चलते या तैरते थे। कहीं भी सूखी जगह का नामो निशान तक नहीं था। हाँ, गुना बाबा ने कहा, उस वक्त की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हमेशा गीले 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 रहने से थक चुके सारे पशु पक्षी और मानव अब गए चार जुगनी माताओं के पास, जो सृष्टि की माताएं थीं। हमें कब तक इस तरह जीना होगा, उन्होंने विलाप किया। कुछ करो ओ जुगनी माताओं, वे रोए। और फिर गुना बाबा ने कहा, चारों जुगनी माताएं धरती की खोज में निकल पड़ी। सालों साल वे ढूंढती रहीं ढूंढती रहीं, लहरों के नीचे, सूरज के पीछे, इंद्रधनुष से आगे और एक वर्षा ऋतु से दूसरी के बीच, मगर उन्हें धरती कहीं नहीं मिली। जुगनी माताएं निराशा से सिर हिलाते घर वापस आ गईं। धरती कहीं नहीं है, उन्होंने कहा। फिर जुगनी माताओं ने कुछ देर सोचा और बोली, चलो भगवान से धरती खोज निकालने की मांग करते हैं। और वे पहुंची बादलों में बसे भगवान के महल में। महल में उन्होंने भगवान को सोते हुए पाया। बेचारा, गुना बाबा ने समझाया, उसने इतनी मेहनत की थी इसलिए वो बहुत थका हुआ था। जुगनी माताएं रोई चिल्लाई, बहुत मिन्नतें की, मगर भगवान था कि खर्राटे भरता ही रहा। सबसे छोटी जुगनी माता ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और भगवान के पास जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसने रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भगवान चौंक कर झट से उठ बैठा। अपने पास छोटे से बच्चे को लेटे देख उसके मुंह में अपनी उंगली ठूंस दी और फिर सो गया। पर याद रखो, गुना बाबा ने कहा, वो भगवान था, उसकी उंगली से तो दूध बहने लगा। बच्चा भगवान की उंगली को जोर जोर से सुरप सुरप चूसता रहा, रुकने का तो नाम ही नहीं। जैसे जैसे बच्चा मोटा होता गया, वैसे वैसे भगवान पतला होता गया। अब भगवान जाग गया और चिंता करने लगा। वो ज्योतिषी के पास भागा। ज्योतिषी को ढूंढना भी इतना आसान कहां, वो तो कहीं पानी में तिरता जा रहा था। और जब भगवान को आखिर में ज्योतिषी मिल गया तो उससे कहा,
मुझ पर एहसान करो, मुझे बताओ ये बच्चा है कौन, मैं इतना दुबला कैसे हो गया, मेरी तबीयत क्यों बिगड़ी हुई है, कृपा करके मेरी मदद करो।
ये चार जुगनी माताओं में से एक है, ज्योतिषी ने जवाब दिया, वे चाहती हैं कि तुम उनके लिए धरती खोजो।
ओह,
भगवान ने कहा,
और मेरी कुंडली क्या कहती है, धरती खोज पाऊंगा?
ज्योतिषी थोड़ी देर तक भगवान की जन्म कुंडली ध्यान से पढ़ता रहा, फिर उसे नीचे रखकर बोला, नहीं, तुम धरती नहीं खोज पाओगे। अब तो भगवान फंस गया। ना केवल उसकी तबीयत खराब थी, उसे अब इस कठिन काम से भी निपटना था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने महल लौटा और बच्चे को, जिसने रोना बंद कर दिया था, उसे चार टुकड़ों में फाड़ डाला। लेकिन भगवान का दुर्भाग्य, हर टुकड़ा एक माता बन गया और अब चार की जगह सात जुगनी माताएं हो गईं। बेचारा भगवान क्या करता, किसी तरह जुगनी माताओं को चकमा देकर अपनी जादू की गाड़ी में भाग गया। पर गुना बाबा सिर हिलाते हुए बोले, जुगनी माताओं से पीछा छुड़ाना इतना आसान थोड़े न था। भगवान के पास इसका हल होना ही चाहिए, जुगनी माताओं ने कहा। इस बार जुगनी माताओं ने अपने पसीने की बूंदों से सात भंवरे बनाए और उन्हें भगवान को ढूंढने भेज दिया। सालों साल बीत जाने के बाद भंवरों ने भगवान को ढूंढ निकाला। जल्द ही सातों भंवरों ने और सातों जुगनी माताओं ने भगवान को पकड़ लिया। उसकी कुहनियों से कसकर लटक गईं, उसके पैरों से चिपक गईं और उसके कंधों से झूलने लगी। अब आपको हमें बताना ही पड़ेगा कि हम धरती की खोज कैसे करें, सातों भंवरों ने और सातों जुगनी माताओं ने कहा।
मैं नहीं जानता कैसे और कहां धरती की खोज की जाए,
भगवान घिघियाया।
मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, ज्योतिषी से पूछो, उसे पता होगा।
पर जब जुगनी माताओं और भंवरों ने ज्योतिषी से पूछा तो उसने बस यही कहा, कछुए काली कछू से पूछो, और फिर पानी में तिरता चला गया। और एक बार फिर गुना बाबा ने कहा, सातों जुगनी माताएं और भंवरे निकल पड़े। कई वर्षों के बाद उन्हें काली कछू मिल ही गया। वो गहरे पानी से उभर कर बाहर ताजी हवा में सांस लेने आया था। काली कछू, सातों जुगनी माताओं और सातों भंवरों ने एक स्वर में कहा, काली कछू, कृपया हमारे लिए धरती ढूंढ निकालो।
धरती?
आप चाहते हो मैं धरती ढूंढ निकालूं, काली कछू ने कहा। ये तो भाई बड़ा ही मुश्किल काम है। असंभव ही मान लो।
दया करो, ओह दया करो।
सातों जुगनी माताएं और सातों भंवरे विनती करने लगे। ठीक है, काली कच्छू ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। मेरे लौटने तक तुम सब उस कमल पर मेरी प्रतीक्षा करो। और काली कच्छू तैरता हुआ धरती की खोज में निकल पड़ा। सातों जुगनी माताएं और सातों भंवरे उस कमल पर बैठ गए और काली कच्छू की प्रतीक्षा करने लगे। आखिरकार एक दिन कई वर्षों के बाद काली कच्छू लौटा, अपनी पीठ पर एक अंडा ला दे। ये लो, काली कच्छू ने कहा, अंडा ले लो। अंडा काफी भारी था। सातों जुगनी माताएं और उनके आसपास मंडराते हुए सातों भंवरे हैरान हुए। हमें अंडा क्यों दे रहे हो, हम इसका क्या करें, उन्होंने पूछा। इसे संभाल कर रखो, काली कच्छू ने कहा, एक दिन ये फूट जाएगा। जुगनी माताओं ने काली कच्छू की बात मानी और अपनी जान से भी ज्यादा उस अंडे की रक्षा करने लगी और बहुत जल्द अंडा फूट गया और धरती यूं बनी। जैसे जैसे हवा और वर्षा ने उसे छुआ, धरती फैलने लगी। धीरे धीरे पेड़, घास, झाड़ियां और जड़ी बूटियां उगने लगे। चट्टानें और पहाड़ दिखाई देने लगे। पक्षियों ने पेड़ों और झाड़ियों में घोंसले बनाने शुरू कर दिए। फूल खिलने लगे। पशु जंगल में मजे से घूमने लगे और इंसान गोल गोल झोपड़ियों में रहने लगे और फलों से अपना पेट भरने लगे। रही बात जुगनी माताओं की, अब जब धरती की खोज सफल हो गई, वे एक घने विशाल पेड़ की छाया में सो गईं। भगवान की नींद से भी ज्यादा मजे की नींद में सुंदर सुंदर सपने देखती हुईं।